Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Jai Radha Madhava Kunja Bihari Vallabha Girivara Dhari Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Girivara
ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada ki Sri Sri Radha Govinda Dev ki Sri Sri Sitaram Lakshman Hanuman ki Sri Sri Pancha Tattva ki Samavet Gaura Bhakta Vrinda ki Nitai Gaur Premande To sab mere piche dohraiye
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya Gyana Timirandasha Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Ena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Bhistam Stapitam Ena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha శ్రీరూపాం సాగరజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతాం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరి ప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. ఆజ్ హమ్ చర్చా కరేంగే భగవద్గీతా సే. తో భగవద్గీతా సే ఆప్ సబ్ పరిచిత హో. భగవద్గీతా వో గీత హై జబ్ అర్జున్ జో భగవాన్ కే ప్రియ సఖా హై. కౌన్ హై భగవాన్ కే సఖా. తో భగవాన్ కే ప్రియ సఖా అర్జున్ బహుత్ అధిక డిప్రెషన్ స్ట్రెస్ టెన్షన్ ये परिचित शब्द है. तो उससे अर्जुन बहुत परेशान हो गए थे और उनको ये पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपने जीवन में. वो ऐसी स्थिति में आकर पहुंचे थे एक पॉइंट पर कि जहां उनको निर्णय लेना बहुत कठिन हो रहा था. तो भगवान कृष्ण ने उनके लिए एक सुमधुर गीत का गान किया. जैसे आजकल कोई टेंशन में रहता है तो MP3 प्लेयर्स होते है ना, मोबाइल में सॉन्ग्स होते हैं, गाने होते हैं, तो कान में लगा के सुनते हैं हम और फिर थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन खत्म हो जाता है, कम हो जाता है. तो वो समय तो ये फैसिलिटी नहीं थी. अर्जुन क्या लगा था कान में, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, डायरेक्ट उनके पास भगवान कृष्ण थे और भगवान कृष्ण के ओठों से इस गीत को उन्होंने सुना है. तो भगवान की जो वाणी है उसको अपौरुषेय वाणी कहा जाता है. क्योंकि अपौरुषेय वाणी क्यों है, क्योंकि भगवान की जो वाणी है उसमें चार प्रकार के दोष नहीं है. भगवान गलती नहीं करते, भ्रमित नहीं होते, उनकी इंद्रिया अपूर्ण नहीं है इत्यादि. तो लेकिन हमारी जो वाणी है वो अपौरुषेय नहीं है, वो दोषों से भरी हुई है. तो ऐसे जो भगवान उस गीता को या गीत का उच्चारण करते हैं, गीत को गाते हैं और सारे लोगों के लिए वो गीत है और सारे समय के लिए वो गीत है, ऐसा ये भगवद गीता है. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता टाइमलेस स्क्रिप्चर है, टाइमलेस स्क्रिप्चर है, हर एक व्यक्ति के लिए है, हर समय के लिए है. भगवद गीता ये जो गीत है, आजकल के जो मूवी सॉन्ग्स हैं आते हैं 10 दिन रहते हैं और फिर गुम हो जाते हैं, लेकिन भगवद गीता भगवान ने गाई तो वो निरंतर हमेशा हमेशा के लिए है, शाश्वत है. तो भगवान ये भगवद गीता प्रदान करते हैं या इस गीत को गाते हैं और ये गीत क्या है, एक ऐसी दवाई है. किस चीज की दवाई है, तो शास्त्र कहते भगवद गीता तो मृत्यु की बीमारी, मृत्यु की दवाई है. किस चीज पर औषधि है, मृत्यु के ऊपर. भव औषधि स्तोत्र मनोभिरामात, शास्त्र कहते हैं कि ये भव औषधि है जिसको कान के द्वारा पिया जाता है. हमें तो कान दर्द होता है तो कान की दवाई कान में डालते हैं, है ना. तो लेकिन यहां ये जो भगवद गीता है ये केवल कान के माध्यम से हृदय में जाती है और सब प्रकार के जो कष्ट है, विशेष रूप से मृत्यु आदि का जो भय है, हमारे हृदय से उखाड़ के फेंक देती है। क्योंकि हम सब लोग इस जगत में एक कौवे के जैसे जी रहे हैं। किसके भांति? कौवे के भांति। अभी कौवे का इतना गुणगान कोई करता है क्या? नहीं। कोयल का जरूर हम गुणगान करते हैं, उसका मधुर कंठ होता है, मधुर ध्वनि है। और ये संसार में जो लोग हैं वो कौवे की प्रशंसा करते हैं। कौवे से हम सीख सकते हैं कि कौवा क्या करता है, हमेशा गंदी चीजें ढूंढता है, कहां कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कहां गंदगी है, कहां मरा हुआ डेड बॉडी है, वो ढूंढेगा और उसमें जाकर अपनी चोंच मारते रहेगा, कुछ ना कुछ खाते रहेगा। तो ऐसे ही एक बार एक काला कौवा एक मृत शरीर के ऊपर बैठ गया। अब नदी में जाते हैं, भारत में अभी तो जलाते हैं शरीर को जब देहांत होता है, तो जिन लोगों के आसपास गंगा नदी होती है वो क्या करते हैं? बहा देते हैं। तो गंगा में शरीर को त्याग देना या बहा देना बहुत ऑस्पिशियस है, मंगल है। तो ऐसे गंगा में कई सारे मृत शरीर बहते रहते हैं। पिछले साल हमें भी कई सारे मृत शरीर देखने को मिले, तो कई सारे डेड बॉडीज को देखते हुए जा रहा था गंगा में, तो एक डेड बॉडी के ऊपर बहुत सारे कौवे बैठे थे। तो ऐसे ही स्थिति एक कौवे की थी जो एक मृत शरीर के ऊपर बैठा था और खाते जा रहा था, उस डेड बॉडी को खाते जा रहा था, और इतना निमग्न हो गया उसको किसी भी चीज का भान नहीं रहा, वो पूर्ण रूपेण उसमें निमग्न हो गया। और थोड़े दूर जाने के बाद वो जो नदी है उस समंदर को मिल जाती है, और वो डेड बॉडी कहां बहती है? अंदर 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 समंदर के अंदर जा रही है, और उसके ऊपर कौवा बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? और वो निमग्न है उस मृत शरीर को खाने में। और बहुत लंबे समय तक गुजरने के बाद जब उसका पेट भर जाता है, डकार आती है ना व्यक्ति को, तब उठता है, वो अलग होता है। तब उसने अपनी चोंच ऊपर की, आंखें खोली, इधर उधर देखने लगा कि अभी मुझे बाहर निकलना है, अभी मुझे जाना है दूर। देखा सब जगह क्या दिखाई दे रहा था उसे? पानी पानी, जलाशय, इतना भयावह। और वो सोच रहे अभी कैसे मैं जाऊं, उसके पास वो शक्ति नहीं थी। विशाल सागर जिससे बाहर जाना उस कौवे के लिए असंभव है। कौवे में क्या शक्ति है सागर को लांघने की? जैसे कुत्ते में क्या शक्ति है सागर को क्रॉस करने की? कोई व्यक्ति कहेगा कुत्ते की पूंछ पकड़ के मैं सागर को पार करूंगा, संभव है? नहीं है। तो कौवा भी उसको पार नहीं कर सकता। तो कौवे ने जब देखा ये तो विशाल है, मेरे पास उतना बल नहीं, शक्ति नहीं है। हाँ, और ये उसी प्रकार से हमारी स्थिति है। हम भी जो जीवात्मा उस कौवे के भांति है और इस शरीर के ऊपर बैठा है। कौन सा शरीर है? ये भी एक मृत शरीर है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक इसमें लाइफ है, प्राण है। जैसे आत्मा इस देह को त्याग देता है तो ये मृत, ऑलरेडी ये मृत शरीर है, लेकिन आत्मा जाने के बाद एक्टिव हो जाता है। तो वैसे ही हम, हाँ, जैसे वो कौवा उस मरे हुए शरीर में उसको खाने में, उसका उपभोग करने में इतना निमग्न हो गया कि वो महाभयावह जलाशय या जल राशि में चला गया, जिससे बाहर निकलना उसके लिए क्या हो गया था? कठिन हो गया था, असंभव हो गया था। तो वैसे हमारी स्थिति है, हम भी इस भौतिक शरीर में फंसे हैं और इस शरीर का उपभोग कर रहे हैं। शरीर के द्वारा क्या कर रहे हैं? भोग रहे हैं। और भोग कौन सी चीजों के माध्यम से? जो इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियों के द्वारा हम इस शरीर को उपभोग कर रहे हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। तो माया मुग्ध, बल्कि निकृष्ट चीज को खाने में वो कौवा लगा पड़ा है, वैसे हम भी जो इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला जो निकृष्ट सुख है उसका उपभोग करने के लिए पागल हो उठे हैं, और उस पागलता के कारण हम भूल गए हैं और इस भव सागर में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि तीन तापों से भरा है उसमें अटक गए हैं, और यहां से बाहर निकलना हमारे लिए असंभव हो रहा है। इसलिए कृष्णदास कविराज ने कहा माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। तो इस प्रकार से माया से मोहित हुआ जो जीव है उस कव्य के भांति उसको स्वतः भगवत ज्ञान नहीं हो सकता, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए भगवान कृष्ण द्वापायन व्यास जैसे महामुनि को भेजते हैं, और ऐसे महामुनि क्या करते हैं कैल कृष्ण वेद पुराण वेदों को उपनिषदों को पुराण महाभारत आदि की रचना करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं श्री शूद्र द्विज बंधुना त्रैन श्रुति गोचरा, कि जो श्रिया है शूद्र है और जो द्विज बंधु है ये तीन व्यक्ति कभी अध्यात्म को बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। शूद्र हम सब लोग तो शूद्र ही हैं, कलो शूद्र संभव, कलयुग में जो भी व्यक्ति वो शूद्र है, चाहे बाहरी रूप से वो ब्राह्मण कहलाता हो या क्षत्रिय वैश्य, लेकिन क्या है कलयुग का हर एक व्यक्ति जन्मना जायते शूद्र, कलयुग में जिसने भी जन्म लिया है वो शूद्र है। तो ऐसे शूद्र व्यक्ति ये जो मेंटेलिटी है कलयुग के जीव क्या भगवत तत्व को समझ सकते हैं। इसलिए वेदव्यास ने क्या किया इनके लिए अध्यात्म बहुत सरल हो उसके लिए वेदव्यास ने रचना की, एक महान ग्रंथ की रचना की, और वो ग्रंथ का नाम क्या था महाभारत। क्या नाम था महाभारत। तो महाभारत क्यों ये रचना है, क्योंकि महाभारत में बहुत ड्रामास हैं, थ्रिल्स हैं, नहीं, और कितनी सारी चीजें हैं, फैमिली लाइफ है, रिलेशनशिप्स है, और मनी अफेयर है, सब कुछ है। जब ये इन चीजों से व्यक्ति गुजरता है पढ़ता है उन रोचक कथाओं को लगता है कि मुझसे रिलेवेंट है, ये चीजें मुझसे मिलती जुलती है अपने लाइफ से, और ऐसे महाभारत में व्यक्ति जाता है और उसमें भगवान वेद व्यास या कृष्ण ने एक रत्न रखा है महाभारत में, और वो रत्न क्या है श्रीमद भगवत गीता। महाभारत 1,00,000 श्लोकों का है, कोई व्यक्ति महाभारत को पढ़ता है समझता है लेकिन महाभारत के इस मूल्यवान रत्न को ढूंढ के नहीं निकालता, हाँ, तो उसका महाभारत पढ़ना अनुचित है, व्यर्थ है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार से भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रा द्विनिश्रुतम, भारतामृत सर्वस्वम, भारत महाभारत का अमृत क्या है भगवत गीता है। जिस प्रकार से दही का मंथन किया जाता है तो मक्खन निकल के आता है, तो उसी प्रकार से महाभारत जो 1,00,000 श्लोक है उनका कोई मंथन करेगा तो उसमें से 700 श्लोक निकल के आते हैं और वो क्या है भगवत गीता है, जो भगवान की प्रमुख शिक्षाएं हैं जिसको व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसा एकमेव ग्रंथ है जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुख से बोला है, और इस ग्रंथ की विशेषता क्या है कि कई ऐसी चीजें हैं जो बाकी किसी ग्रंथों में आपको प्राप्त नहीं होगी, वो चीजें भगवत गीता में छुपी हुई हैं, और ये भगवत गीता परफेक्ट है, पूर्ण है, परिपूर्ण ग्रंथ है, परिपूर्ण नॉलेज है भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो ये भगवत गीता भगवान क्यों बोलते हैं पर्सनली, उनको क्या आवश्यकता थी, वो किसी और को एंगेज करते थे, अरे अर्जुन को ही तो ज्ञान देना है ना, मैं अपने किसी भक्त को बोल देता जाओ लेक्चर दे के आ जाओ, कहा युद्ध क्षेत्र की भूमि पर डायरेक्ट, उनको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो देखा जाता है कौन से ऑडियंस है क्या है, उसके अनुसार स्पीकर को भेजा जाता है, नहीं तो वैसे ही है। तो लेकिन भगवान ने देखा कि ये अर्जुन बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, सबसे पहले क्या है भक्तों सीमे सखा चेती, ये सर्वसाधारण श्रोता नहीं है, हाँ ये स्पेशल है, क्योंकि ये मेरा भक्त है और भक्त ही नहीं बल्कि मेरा प्रिय सखा है। तो भगवान पर्सनली भगवद गीता को बोलते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन प्रमुख तीन कारण कहे जा सकते हैं कि भगवान अपने मुख से भगवद गीता को बोलने का कारण है कि भगवान के हृदय में जीवों के प्रति बहुत प्रगाढ़ दया, प्रगाढ़ करुणा का भाव जब भगवान कृष्ण के हृदय में उदित हो गया तो भगवान को रहा नहीं गया। उन दया के कारण भगवान ने कष्ट उठाया बोलने का, भगवद गीता का वर्णन करने का, इस ज्ञान रूपी गंगा को प्रदान करने का। और दूसरी चीज क्या है, क्यों स्वयं भगवान बोलते हैं भगवद गीता को, क्योंकि भगवान स्थापित करना चाहते हैं अर्जुन को अपना सर्वश्रेष्ठ भक्त। भगवान चाहते हैं कि हर जीव मेरा भक्त बने। भगवान चाहते हैं कि ये अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धुरंधर महान भक्त पूरे विश्व में घोषित हो जाए। और तीसरी चीज क्या है, मृत्यु की भी मृत्यु है। भगवद गीता क्या है, मृत्यु के लिए मृत्यु है। मृत्यु के लिए मृत्यु क्या हो सकता है, कृष्ण का स्मरण। क्या है, कृष्ण का स्मरण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए गीता महात्म्य में कहा गया है, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा रूपी, ये गीता रूपी गंगा को कोई पीता है तो पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं पिबन्ति कर्ण रंध्रेन, भगवद गीता को पीते रहो। ये बहुत पावरफुल टॉनिक है, कानों के माध्यम से पियो। जैसे कहते ना, हियरिंग इज इयरिंग, श्रवण करना हमारे कानों के लिए क्या है, कुंडल है। अभी सब लोग कानों में कुंडल डालना चाहते हैं, पहले माता ये डालती थी, आजकल तो यंगस्टर्स डालने लगे कुंडल, है ना, काफी चीजें। तो हमारे लिए असली कुंडल क्या है, कृष्ण के बारे में श्रवण करना। बल्कि जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो सबसे पहले कोई इंद्रिय हमारा एक्टिव हो जाता है, ऑन हो जाता है, तो शास्त्र कहते कान है। और सबसे आखिरी तक कोई एक्टिव इंद्रिय रहती है तो वो क्या है, कान ही है। इसलिए कान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने हमें एक मुंह दिया है लेकिन दो कान दिए हैं कि क्या करो, दोनों ओर से डालते रहो, क्योंकि कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे केवल 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 कानों के माध्यम से। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, भागवतम कहते हैं प्रवेश करता हूं मैं, कृष्ण कहते कैसे प्रवेश करते हो, कानों के रंध्रों के माध्यम से, कानों के जो होल्स हैं वहां से मैं प्रवेश करता हूं और व्यक्ति के हृदय रूपी कमल में जाकर निवास करता हूं, भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवद गीता भगवान की साक्षात वाणी है और भगवान भगवद गीता के अंतिम उपसंहार 18वें अध्याय में भगवान बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। भगवद गीता को जब एंड करने जा रहे थे भगवान, तो भगवान ने अपने हृदय को ओपन किया। भगवान के हृदय में क्या है कौन समझ सकता है, कौन समझ सकता है, नहीं समझ सकता। हम अपने घर वालों के हृदय में क्या है वो जानते नहीं है कि नहीं, पत्नी के हृदय में क्या है, पति के हृदय में क्या है, बच्चों के हृदय में क्या है, कोई जानता है? तो कहां हमारी वो ये है कि हम भगवान के हृदय में क्या है वो जान सकते हैं, लेकिन भगवान ही स्वयं अपने हृदय को ओपन करते हैं। किसके पास अपना हृदय खोलते हैं, अपने भक्त के पास। जैसे हम किससे प्रीति रखते हैं, कोई हमारा बहुत प्रिय है तो हम कहते ना, रुको रुको मैं अपने मन की बात बताता हूँ। अच्छा, मन की बात, अटेंटिव हो जाता है, बहुत अटेंटिव। और फिर व्यक्ति सोचता है कोई और सुन तो नहीं रहा है ना, ध्यान से हम देखते हैं कोई आसपास तो नहीं है। तो वैसे ही पूरी भगवद गीता को बोला और भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो 65वां श्लोक है उसमें भगवान ने अपना जो हृदय है उसको ओपन किया और गुह्य चीजें बताने लगे कि क्या सीक्रेट है, भगवद गीता का रहस्य क्या है, गुह्य चीज क्या है। तो भगवान ने जितने भी उपदेश देने थे वो शुरुआत में तो उपदेशों की धारा बहा दी उन्होंने, ये करो वो करो, बहुत सारे उपदेश दे दिए, लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, अभी जो सुप्रीम इंस्ट्रक्शन है, हाँ सुप्रीम को क्या कहेंगे, सर्वोच्च, हाँ सबसे जो ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं अभी प्रदान करूंगा, और ये आखिरी है, और यही वास्तव में गुह्य है। जैसे भगवान हाँ उससे पहले वाले श्लोक में कहते हैं सर्व गुह्य तमम भूया सुनो मैं परम वचन, हे अर्जुन अभी सुनो सुनो ध्यान से सुनो, मैं बहुत गुह्य चीजें तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो अर्जुन के कान खड़े हो गए, कैसे हो गए खड़े, जैसे कृष्ण वृंदावन में थे तो जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो जहां जहां गवे हैं जहां जहां उनके बछड़े होंगे, बछड़े यदि गाय का दूध पी रहे हैं तो स्तब्ध हो जाते थे, गाय के स्तनों को मुंह में रख के बिल्कुल शांत, और उनके कान खड़े हो जाते थे, और कहां कहां हो जाते था डायरेक्शन कानों का, जहां से आवाज आ रही है। और गायों के साथ भी वैसे ही था, गोपियां भी भागती थी उस ओर, तो वैसे ही कृष्ण ने जैसे कहा कि गुह्य चित बताने जा रहा हूं, तो अर्जुन युद्ध स्थल के भूमि पर खड़े हो गए। श्रोता वैसे बैठ के सुनता है, कैसे सुनता है बैठकर, श्रोता को हमेशा नीचे होना चाहिए और जो वक्ता है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, लेकिन अभी जैसे बोला ये बिल्कुल अभी थोड़े से खड़े हो गए और सुनने के लिए तत्पर हो गए, अपना पूरा मन अपना चित्त अपने विचार अपना हृदय अर्जुन ने एकाग्र किया और कहा कि हे प्रभु हे कृष्णा आप बताइए क्या गुह्य चित आप बताने जा रहे हैं। उससे पहले अर्जुन को कहा तुम्हें याद है पहले भी दो गुह्य चीजें मैंने तुम्हें बताई थी, हाँ बताई थी कि नहीं, गीता में तीन गुह्य चीजें हैं। तो भगवान ने कहा पहले तो मैंने बताया था गुह्य ज्ञान, और वो गुह्य ज्ञान क्या है, ब्रह्म वस्तु के बारे में मैंने बोला था, और दूसरा था गुह्यतर ज्ञान परमात्मा आदि के बारे में वर्णन किया था, लेकिन अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं वो क्या है, गुह्यतम है, गुह्य गुह्यतर और गुह्यतम। ये गुह्यतम ज्ञान क्या है, गुह्यतम ज्ञान जिसको भगवान नवे अध्याय में भी बताते हैं, इदं ते तु गुह्यतमम्, भगवान कहते हैं गुह्यतम है, प्रवक्षामि अनसूयवे, हे अर्जुन ये ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम ईर्षा से रहित हो, क्या हो, ईर्षा से रहित। भगवत ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने के लिए उसको समझने के लिए हमें ईर्षा से रहित होना होगा, तभी वास्तव में भगवान एक कमल के भांति हमारे हृदय में खुलने लगते हैं, क्लियरिटी भगवत ज्ञान की क्लियरिटी हमें महसूस होने लगती है। तो भगवान ये जो गुह्यतम ज्ञान है वो प्रदान करने लगे, और गुह्यतम ज्ञान क्या है, भगवान कहते हैं मेरे तो भगवान के शरणागत होने का जो ज्ञान है वो गुह्यतम ज्ञान है। गुह्यतम ज्ञान क्या है, भगवान के शरणागत होने का जो ज्ञान है उसको गुह्यतम ज्ञान भगवान ने कहा है। तो ऐसे भगवान अपने प्रिय भक्त अर्जुन को इस चीज को बोलते हैं और वो कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। ये गुह्यतम ज्ञान है कि हे अर्जुन तुम क्या बनो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। तो ये गुह्यतम ज्ञान है, भगवान ने इसी श्लोक को गीता के कई स्थानों में बोला है, रिपीट किया है। कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है तो उसको क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। तो भगवान ने कहा कि मन मन मना भव मत भक्तो, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन मेरी ये अंतरंग इच्छा है, मेरी इच्छा क्या है कि जीव कृष्णदास ये विश्वास कर ले तो हर दुख नाए। ये जो जीव मुझसे अलग होकर भौतिक भोग की लालसा से नाना प्रकार के योनियों में भ्रमण कर रहा है और अनेकों अनेकों अनगिनत कष्ट प्राप्त कर रहा है, उससे ये मुक्त हो सकता है यदि केवल वो एक चीज में स्थिर हो जाए, एक तत्व को समझ ले, क्या, जीव कृष्णदास ये विश्वास हर एक व्यक्ति केवल यह अनुभव करे कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, कर लेता और दुख ना है, फिर उसके जीवन में कोई दुख प्रवेश नहीं कर सकता। वास्तव में ये बड़ा सरल है, सरल है कि नहीं कि मैं कृष्ण का दास हूं। अभी जिनका दीक्षा हो जाता है उनका नाम तो वैसे ही दास पड़ता है, कृष्ण दास, कृष्ण दासी, हाँ उनको लगता है परफेक्शन, जीवन में अभी सिद्धि, अभी भक्ति खत्म, आगे कुछ करना नहीं है। वो भूल जाते कि अभी एक एडमिशन लिया है भगवत भक्ति में, क्या किया है, इनिशिएशन का मतलब है शुरुआत, दीक्षा का मतलब क्या है, शुरुआत, पहला दिन है आपका भक्ति का। तो ऐसे भगवान हमें एनकरेज करते हैं और भगवान कहते हैं कि वास्तव में अर्जुन मेरी कोई अंतरंग इच्छा है तो मैं केवल यही देखना चाहता हूं कि हर जीव भक्त बने, हर जीव क्या बने, भक्त बने, भव मत भक्तो, मेरा भक्त बने। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। तो गुह्यतम अंश सारे ज्ञान का कि कृष्ण का शुद्ध भक्त बना जाए, कृष्ण का महान भक्त बना जाए। तो भगवान सारा प्रयास ये जगत में इसलिए करते हैं, जैसे केवल एक ही चीज के लिए कृष्ण प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण हर समय देखना चाहते हैं कि ये जगत में जो जीव है वो उनके भक्त बने। कैसे भक्त बने, शुद्ध भक्त बने। जैसे पांडव हैं, भगवान कृष्ण ने कितना सारा कष्ट उठाया पांडवों को स्थापित करने के लिए, उनको एस्टेब्लिश करने के लिए, उसी प्रकार से भगवान हर जीव को भक्त बनाने के लिए कृष्ण बहुत कठिन प्रयास कर रहे हैं। पांडवों के लिए कृष्ण दूध बनते हैं, पांडवों के लिए कृष्ण सारथ्य स्वीकारते हैं, एक ड्राइवर बनते हैं। पांडवों के लिए कृष्ण महाभारत के युद्ध के पहले कुंती से याचना करते कि हे कुंती, इस युद्ध के लिए तुम्हारे मुझे 5 पुत्र चाहिए। तो वो कहते आप ले जाइए, ये आपकी सेवा के लिए तो है, पुत्र किसके लिए है, कृष्ण की सेवा के लिए है। प्रभुपाद ने कहा जब मैं वृंदावन से आता था दिल्ली, और मैं कई सारे दिल्ली में भ्रमण करता था, लोगों के पास जाता था कि आपके पास 2-4 बच्चे हैं, एक लड़का मुझे दे दो, मैं उसको भगवत गीता भागवत आदि की शिक्षा दूंगा और वो कृष्ण भावना का प्रचार करेगा। तो उन्होंने कहा हमारे पास ये सब देने के लिए नहीं है। प्रभुपाद ने कहा इसी कारण से मुझे भारत को छोड़ना पड़ा, क्योंकि भारत में लोग इस चीज से बहुत अधिक आसक्त है, मैं और मेरा, ये सूत्र है लाइफ का, सूत्र क्या है जीवित रहने का, मैं और मेरा, और ये दुखों का सूत्र है। जितना अधिक हम मैं और मेरा से बंधित रहेंगे उतने ही अधिक हम अपने जीवन में दुख का अनुभव करेंगे। जैसे शास्त्र कहते हैं कि ये जो आसक्ति है ये हमारे दुखों का कारण है। एक बार एक व्यक्ति, उसको अमेरिका जाना था, तो उसके पास घर में एक गाय थी, तो उस गाय को उसने सोचा कि गाय को किसको देके जाऊं। तो उस व्यक्ति ने पड़ोसी को देखा, पड़ोसी को कहा देखो मैंने कुछ महीनों के लिए विदेश जा रहा हूँ, विदेश गमनम, विदेश यात्रा करने जा रहा हूँ, मेरे गाय को आप संभालो। तो उन्होंने कहा संभालूंगा, दूध देती है ना, फिर तैयार हो गाय को संभालने के लिए। कलियुगा में कहते हैं गाय कम हो जाएंगे और कुत्ते बढ़ेंगे, घरों में क्या हो जाएगा, गाय कम हो जाएंगे कलियुगा में, कुत्तों की संख्या बढ़ेगी। ये कलियुगा का लक्षण है भागवतम में। तो ये व्यक्ति गया, इसने पड़ोसी को गाय दे दी और पड़ोसी गाय को संभालने लगा, तो संभालते हुए देखा कि गाय तो बहुत दूध दे रही है, लेकिन जो पड़ोसी है जितना भी दूध निकालता था उसके घर में कुत्ता था, उस कुत्ते को पिलाता रहता था। पत्नी ने सोचा मेरे पति तो पागल तो नहीं हुआ है, दूध तो बच्चों को पिलाना चाहिए, मुझे पिलाना चाहिए, खुद ने भी पीना चाहिए, लेकिन जितना भी दूध आ रहा है वो कुत्ते को पिलाते जा रहा है। ऐसे कई दिन बीते, अभी कुत्ते को तो आदत हो गई थी दूध पीने की। फिर कुछ दिन हो गए, और फिर वो जो मालिक है गाय का जो स्वामी है वो आता है वापस अपनी गाय को लेने के लिए। तो गाय को जब वो लेने के लिए आता है तो उस समय जैसे वो गाय को पकड़ता और ले के जाना जाने लगता है तो कुत्ता बहुत जोर जोर से भूकने लगता है, भूकते जा रहा है भूकते जा रहा है। तो पत्नी ने अपने पति से पूछा ये क्यों भूक रहा है। पति ने कहा वो दूध यदि तुम भी पीती ना तुम भी वैसे ही भूकने लगती। तो पति ये बताना चाह रहा था कि वास्तव में वो कुत्ता आसक्त हो गया है। क्या हो गया है? आसक्त हो गया है, अटैचमेंट, आसक्ति के कारण ये उसके मुंह से इतनी सारी वाणी निकल रही है। तो वैसे ही क्योंकि अभी वो आगे दूध नहीं मिलेगा उसको पीने को, गाय जा रही है। तो भौतिक जगत में हमारे साथ भी वैसे ही है, हम भी अपने जीवन में मैं और मेरा का ये जो सूत्र है ना इससे बंधे हुए हैं और इससे इतने अधिक आसक्त हो रहे हैं, इतने अधिक आसक्त हो रहे हैं कि हमारे जीवन में दुखों की जो लाइन है, सीक्वेंस है, वो बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम भगवान क्या चाहते हैं, हम सबसे भगवान चाहते हैं कि हम उनके अनन्य भक्त बने। भगवान का केवल एक ही प्रयास है, प्रयास क्या है कि सारे जीवों को भक्त बनाने के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ऐसे कृष्ण ने कुंती से उनके 5 पुत्र मांगे। कुंती ने कहा अभी ले जाओ महाभारत के युद्ध के लिए क्योंकि ये आपकी सेवा के लिए है। तो भगवान कहते लेकिन मैं वचन देता हूं तुम्हारे इस 5 पुत्रों को मैं अपने साथ ले जा रहा हूं और बिना किसी खरोच के ये वापस मैं आपको दे जाऊंगा युद्ध के बाद। तो ये कृष्ण का वचन है। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, बल्कि उस युद्ध के दौरान कृष्ण को सर्वाधिक किसी की चिंता थी, किसकी चिंता थी? पांडवों की चिंता थी। केवल अपने भक्तों को स्थापित करने के लिए कृष्ण कुछ भी करने के लिए तैयार है। भगवान ने अपने वचन को तोड़ डाला कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब भीष्म सामने आए, भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की थी आज या तो कृष्ण को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा या तो अर्जुन को मरना पड़ेगा, दोनों से एक। अभी दोनों भक्त है, यहां अर्जुन भी भक्त है और सामने युद्ध करने के लिए कौन है? भीष्म भी कृष्ण के शुद्ध भक्त है। तो भगवान अपने भक्तों को स्थापित करने के लिए अपने वचनों को भी तोड़ते हैं। और महाभारत का युद्ध की जब रात्रि होती थी तो पांडव तो सो जाते थे आराम की नींद में, लेकिन कृष्ण कभी नहीं सोए 18 दिन के लिए। कृष्ण रात्रि में प्लान बनाते रहते थे, घोड़ों को खिलाते थे, उनको ठीक करते थे, रथ को ठीक देखते थे, ये सब चीजें अर्जुन के लिए करते थे। तो इतना सारा प्रयास भगवान का केवल इसलिए है कि भगवान सदैव हर जीव को भक्त के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए भगवान अभी भी हम सबको भक्त बनाने के लिए भगवान सुविधा प्रदान करते हैं, उनके भक्तों को भेजते हैं, उनके ग्रंथों को प्रदान करते हैं, मंदिरों को हमें देते हैं, भक्तों का संघ हमें प्रदान करते हैं, विग्रह के रूप में भगवान खड़े हैं। कोई व्यक्ति है आपके जीवन में ऐसा जो आपके लिए खड़ा है घर में? हाँ है, आप ऑफिस जा रहे हो घर में आपके जो प्रेमी है वो पूरे दिन खड़े हैं, ऐसा कोई है? नहीं है। यहां कृष्ण हमें भक्त बनाने के लिए दिन रात खड़े हैं, जीवों को केवल दर्शन देने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए कृष्ण चाहते हैं। कृष्ण ये सर्वोच्च जो पोजीशन है भक्त की, ये हमें प्रदान करना चाहते हैं, इतनी बड़ी पोजीशन। तो प्रभुपाद ने, प्रभुपाद जब लंदन गए थे 1977 में, विदेशों की उनकी आखिरी यात्रा थी, तो प्रभुपाद जब लंदन पहुंचे तो वहां बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स और यूथ उनको मिलने के लिए आए। तो प्रभुपाद ने सबसे बात की तो हर एक ने कहा कि मैं PhD कर रहा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो प्रभुपाद सुनते रहे। प्रभुपाद ने कहा हम इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, आप PhD हो या जो मर्जी हो, हम तो एक ही उपाधि के लिए लालायित है, और वो उपाधि, वो पोजीशन क्या है? शुद्ध भक्तम। क्या पोजीशन है? शुद्ध भक्त। तो भगवान चाहते हैं ऐसी पोजीशन देना कि भगवान हमें सर्व करने के लिए तैयार है, लेकिन हम निठल्ले हैं, हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे। हमने क्या कर लिया है? व्रत ले रखा है। हम हमारी स्थिति, जीव की स्थिति तो कुत्ते की पूंछ की तरह है। उसको जितना मर्जी सीधा करने का प्रयास करो, वो कैसे हो जाएगी? टेढ़ी। अभी ये जो जीव इस संसार में आया है, भगवान इतनी सारी योजना बना रहे हैं, इतनी सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं कि ये भक्त बन जाए, शुद्ध भक्त बन जाए। लेकिन हम निठल्ले के बातें, हम वैसे ही हैं कि हम भक्त नहीं बनेंगे, बाकी सब कुछ बनने के लिए तैयार है। जैसे इंद्र, इंद्र को शाप मिला, आप सुनते ना, प्रभुपाद स्टोरी हमेशा सुनाया करते थे। शाप मिला तो वो सुअर बना, सुअर बना तो अभी पिग है, सुअर बना तो उसकी पत्नी भी थी मिस पिग, और उसने सोचा अभी आजकल तो क्रिकेट का बहुत स्कोप है, तो उसने अपना टीम भी तैयार कर लिया। इतने बच्चे, 12-13 टीम था पूरा। और फिर वहां ब्रह्मा परेशान थे, ब्रह्मा ने कहा अरे इंद्र का पोजीशन खाली है, इनको बुला के ले आता हूं। तो ब्रह्मा आ गए चार मुख वाले हंस के ऊपर बैठकर, और इंद्र के पास आए जो सुअर बना था। उन्होंने कहा मिस्टर देवराज, देवराज इंद्र चलिए। तो वो मिस्टर जो इंद्र है सुअर था, वो देखने लगा कौन है देवराज, भूल गया। फिर उन्होंने कहा चलो चलो, आपके लिए वहां इतना स्वर्ग का सिंहासन, ऐश्वर्य, महल आदि खाली है, आप वहां चलो। उन्होंने कहा देखो वहां इतनी सुंदर मिस पिग होगी क्या? उन्होंने कहा ये क्या, वहां तो उर्वशी है, रंबा है, मेनका है, तिलोत्तमा है, कितने सारे अप्सराओं का नाम लिया। उन्होंने कहा ये मानेगा नहीं। ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा ने डंडा उठाया, उसकी पत्नी को मार डाला। फिर उन्होंने कहा देखो, उन्होंने कहा नहीं आ सकता मैं, छोटे छोटे बच्चे है ना ये जो टीम, क्रिकेट टीम, इसको छोड़ के कैसे आ सकता हूं। तो मतलब हमारी स्थिति भी वैसी है, भगवान हमें सबसे बड़ा स्थान देना चाहते हैं, और लेकिन हम उनके भांति हैं, उस इंद्र के भांति हैं, उस उन्नत स्थान को त्याग कर हम निम्न स्थिति में रहना चाहते हैं। सुअर अभी मल खाता है, आप कहोगे कि ये ले लो गरम गरम हलवा, तो वो कहेगा नहीं नहीं वो मल ही ठीक है। तो हमारी स्थिति वैसी है। देखिए अब ये सारे जो फोटोज दिख रहे हैं ये क्या है? कृष्णा सदैव अपने भक्तों को ऊपर का पोजीशन उन्होंने दिया है, सब जगह वो भगवान भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। तो हमारी स्थिति उस कैलाश के भांति है, जो नारद जिनको लेके जाना चाह रहे थे वैकुंठ जगत में। तो इस प्रकार से हम भक्त बनना नहीं चाहते, लेकिन भगवान की अंतरंग इच्छा है कि हम भक्त बने। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, और वो राजमुंद्री गोदावरी के किनारे रामानंद राय से मिले, रामानंद राय से उन्होंने कई सारे प्रश्न पूछे, और एक प्रश्न पूछा, उन्होंने पूछा कीर्तिगण मध्य जीवर कौन बड़ा कीर्ति। तो उन्होंने पूछा कि हे रामानंद राय, आप मुझे बताओ कि सर्वाधिक, सबसे अधिक जो यश है या कीर्ति है, फेम है, उसमें सर्वोत्कृष्ट यशस्वी किसको कहा जा सकता है? तो रामानंद राय ने कहा कृष्ण भक्त बलिया जाहर हय ख्याति। उन्होंने कहा कि जिस जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त हो गया है, हाँ यही इस जगत में सबसे बड़ी ख्याति है। अभी इस जगत में हम हर रोज प्रयास करते हैं कि मेरा त्रिभुवन में कैसे यश फैलेगा, त्रिभुवन में नहीं तो कम से कम फरीदाबाद में, नहीं कम से कम मेरे अशोका इंटलेव पार्ट वन में, नहीं हर एक लगा हुआ है, या तो मैं इस पार्ट वन का अधिकारी बन जाऊं, या कुछ बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, कुछ ना कुछ हम बनना चाहते हैं, यशस्वी होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से सुनते हैं, वो कहते कि वास्तव में सबसे बड़ा यश कोई है या सबसे बड़ी उपाधि कोई है, तो वो यही है कि भगवान का भक्त बना जाए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कलो भागवतम नामं दुर्लभम नैव लभ्यते। कलियुगा में जो भगवान का भक्त का ये जो पोजीशन है वो सबसे अधिक दुर्लभ है। ब्रह्म रुद्र पदोत्कृष्टम गुरु नाम कथितम मम, शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी का पद, इंद्र का पद, हाँ इन सबका जो पद है, शिव जी का जो पद है, इनसे भी श्रेष्ठ क्या है, एक भक्त का, भागवत भक्त का जो उपाधि है वही संसार में दुर्लभ है। इसलिए हमें हमेशा एक ही चीज के लिए लालायित होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं भगवान का भक्त बनूं। और हम सब वास्तव में यहाँ आते हैं किस लिए आते हैं, भक्त बनने के लिए आते हैं। और कृष्ण इसी पर भगवत गीता में जोर देते हैं, उसके अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मां शुच। तो भगवान कहते कि आप मेरी शरण ग्रहण करो, एकमात्र मैं ही आपका आराधनीय हूं, पूजनीय हूं। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, पहले तो कहते भव मद भक्तों की मेरा भक्त बनो, लेकिन भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो भगवान तीन चीजें कहते हैं। भक्त बनने के लिए आपको तीन चीजें करने की आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं मत मनाहा, कि आपका ये जो मन है वो मुझ में लगाओ, और दूसरा क्या है मद्याजी मेरी ही पूजा करो, और तीसरी चीज क्या है माम नमस्कारो मुझे ही नमस्कार करो। कितना सिंपल है, तीन चीजें भगवान चाहते हैं भक्त बनने के लिए। या तो सबसे पहले क्या है आपका मन मुझ में लगाओ, तो मन भगवान में कैसे लगाया जा सकता है, सरल विधि है हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम
राम राम हरे हरे। राजा अम्बरीश मन सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वाचा से वैकुंठ गुणानुवर्णने, कि राजा अम्बरीश जो थे उन्होंने सर्वप्रथम अपना जो मन है कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करने में लगाया। जो रुक्मिणी है जिन्होंने कृष्ण को कभी देखा नहीं, फिर भी उनका जो मन है कृष्ण के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता था। क्यों, मन लगाने के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिसिन क्या है, निरंतर कृष्ण के बारे में श्रवण करो, कृष्ण के बारे में पढ़ो, कृष्ण के नामों का उच्चारण करो। जब हम ये कार्य करते हैं तो सरलता से हमारा जो मन है वो कृष्ण में लगा रहता है, और सदैव कृष्ण की सेवा के बारे में सोचो। इस प्रकार से हम कृष्ण के भक्त बन सकते हैं, यदि हम अपना मन कृष्ण में लगाते हैं और कृष्ण की ही पूजा करते हैं और कृष्ण को ही नमस्कार करते हैं। तो वास्तव में शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान का भक्त बनने के लिए सरल विधि क्या है, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति अधः, कि भगवान की सेवा में नियुक्त होना। सेवा में नियुक्त होने से आप तीव्रता से कृष्ण के महान भक्त बन जाओगे। हनुमान के पास क्या योग्यता थी, एक एक वानर है, बंदर है, गजेंद्र हाथी एक पशु है, जटायु एक और एक पशु है, पक्षी है, इनके पास क्या योग्यता थी इतने महान महान भक्त बने, एक ही योग्यता थी। इन तीनों ने क्या किया, कृष्ण की सेवा की है। हनुमान ने, जटायु ने अपना लाइफ लगाया किसकी सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, गजेंद्र उन्होंने कृष्ण का गुणगान किया। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा करके हम उनके महान भक्त बन सकते हैं, और बहुत सरलता से, जैसे कुब्जा है, भगवान जब 11 साल के थे तो अक्रूर उनको लेने के लिए आ गए वृंदावन से, उनको ले जाते हैं मथुरा, और मथुरा नगरी में प्रवेश करते समय कृष्ण ने कहा कि हे नंद महाराज, आप तो मथुरा के बाहर ही रहिए, मैं अपने सखाओं के संग में बलराम के साथ जाना चाहता हूँ, मथुरा नगरी को देखना चाहता हूँ। गांव से पहली बार बाहर निकले थे, पहले बार सिटी घूमने जा रहे शहर को देखने के लिए। जैसे कृष्ण मथुरा में प्रवेश करने लगे तो कृष्ण अंदर जाते जाते देखा एक धोबी को देखा भगवान ने, धोबी के पास बहुत सारे सुंदर अलग अलग वस्त्र थे। कृष्ण और बलराम जा रहे थे तो कृष्ण ने कहा ये वस्त्र हमें दे दो, धोबी ने कहा अरे ये तो राजा के वस्त्र है, गांव के कहां के निठल्ले गांव वाले। आप यदि फिर से इस प्रकार की मांग करोगे तो सैनिकों के हाथों में आपको दंडित करूंगा, अब भागो यहां से। धोबी कृष्ण और बलराम को कई सारी चीजें बोलने लगा, तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने कुछ सोचा नहीं, अपना हाथ उठाए थप्पड़ लगाए, थप्पड़ लगाए तो उसकी गर्दन ही अलग हो गई। भगवान का कोई भी अंग किसी भी अंग का कार्य कर सकता है, अंगानि यश्च सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। भगवान को यह आवश्यकता नहीं है कि वो मुंह से ही खाए, वो आंखों से क्या करते हैं, खाते हैं, कानों से देखते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कृष्ण भावना का मतलब क्या है कि यह भक्त का मतलब क्या है, जिस चीज को कृष्ण चाहते हैं वो करने के लिए तत्पर रहना, वो है डिवोटी भक्त। तो धोबी ने तो कुछ किया नहीं, भगवान ने वस्त्र उठाए पहन लिए चलने लगे। आगे चल रहे थे भगवान, तो भगवान को एक दर्जी ने देखा, दर्जी जो कपड़े सिलाता है। भगवान कृष्ण बलराम को देखा तो वो बहुत सेवा की भावना उनके अंदर जागृत हो गई। दर्जी ने तुरंत कई सारे कपड़े सिलाए और उनको अर्पित किए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए उनकी सेवा से, उन्होंने कहा तुम्हें तो सारूप्य मुक्ति मिलेगी, इस शरीर को त्यागने के उपरांत तुम आध्यात्मिक जगत में जाओगे और जब तक इस जगत में रहोगे, क्योंकि तुमने मेरी सेवा की है, जब तक इस जगत में रहोगे तब तक सारे सुविधाओं के साथ संपन्नता से तुम जीवन यापन करोगे। तो भगवान दर्जी को ये आश्वासन देकर आगे चलते हैं। तो आगे चलते चलते बलराम और कृष्ण ने देखा कि एक युवती जा रही है, पीछे से जा रहे थे, नहीं वो आ रही थी वहां से, लेकिन वो क्या कहेंगे उसको, कुबड़ी थी, कुब्जा, कुब्जा को उन्होंने देखा। और कुब्जा जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे तो कृष्ण और बलराम सखाओं के संग में थे, तो कृष्ण ने सोचा थोड़ा सा जोक्स करता हूं, मजाक उड़ाता हूं। तो उन्होंने कहा हे तनमंगी, मतलब उन्होंने कहा बहुत आप सौंदर्यवान हो, तुम इतने जल्दी जल्दी कहां जा रही हो। तो उन्होंने कहा मैं तो ये चंदन लेकर कंस के महल में जा रही हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो चंदन है ये कंस के लिए उचित नहीं है, ये चंदन तो केवल आप दोनों के लिए उचित है। तुरंत वो चंदन लेती है और कृष्ण और बलराम को लगाती है। कृष्ण और बलराम संतुष्ट हो जाते हैं उसकी सेवा से। और जैसे ही कृष्ण बलराम उस चंदन को स्वीकार करते हैं तो कृष्ण से रहा नहीं जाता। ये संसार में किसी व्यक्ति के प्रति आप कितनी चीजें करते रहो वो भूल जाता है, कृतज्ञता को भूलता है, कृतज्ञ नहीं होता। लेकिन भगवान की थोड़ी भी सेवा करते हैं तो भगवान तुरंत उसको आदान प्रदान करना चाहते हैं, वापस देना चाहते हैं। तो कृष्ण ने सोचा इसने इतना प्रेम से मुझे ये चंदन अर्पित किया है, इसके बदले में मुझे क्या दूं मैं इसको। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने तुरंत अपना जो चरण है उसके पांव के ऊपर रखा और उसका जो इसको क्या कहते हैं ठुड्डी जो भी है उसको ऐसे हाथ से पकड़ा और ऊपर किया, जैसे वो कुब्जा थे। तुरंत एक सुंदर नव युवती सौंदर्यवान बनती है। तो कहने का तात्पर्य है वास्तव में हम अपने बाकी सारे गुणों से सुंदर नहीं हो सकते, हम केवल जितना अधिक कृष्ण को सर्व करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, उतनी ही अधिक हमारी सुंदरता बढ़ने लगेगी। भगवान उस कुब्जा के सौंदर्य से आकृष्ट नहीं हुए थे, भगवान तो उसकी सेवा रूपी सौंदर्य से आकृष्ट हो गए थे। तो भगवान इस चीज से आकृष्ट हो जाते हैं। तो भक्त का या भक्त बनने के लिए ये सरल उपाय है कि क्या करें, भक्तों के आदेशानुसार भगवत सेवा में नियुक्त हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा कि अल्प अल्प भी मेरी कोई सेवा करता है तो उसका शाश्वत फल प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवत गीता का ये गुह्यतम ज्ञान है। गुह्यतम ज्ञान क्या है, कृष्ण के शरण ग्रहण करने का ज्ञान। और गुह्यतम ज्ञान यही है कि कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाए। इसलिए हम सबके पास ये मनुष्य जीवन है, इसलिए हम सबके पास भक्तों का संग है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पार्षद जगदानंद पंडित कहते हैं साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहे, संसार चिनिते आल कौन वस्तु नाय। कि संसार से पार होने के लिए केवल दो चीजों की आवश्यकता है, एक है भगवान के भक्तों का संग और दूसरा है भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यदि हम इन दो चीजों को पकड़ते हैं, निरंतर अधिक से अधिक मात्रा में भगवान के भक्तों का संग करना, जिससे हम बहुत तीव्रता से भक्त बनने लगते हैं, और दूसरा क्या है, भगवान के जो पवित्र नाम है हाँ उनका उच्चारण करना। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये आंदोलन बनाया है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। संघ मतलब जिनको भक्ति करनी है, भक्त बनना है, उनके लिए अनुकूल एसोसिएशन, हम जिसके द्वारा हम भक्ति में उन्नति कर सकते हैं और सरलता से हम कृष्ण का शुद्ध भक्त बन सकते हैं। हरे कृष्णा, लाउडली चांट करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।